तवगणे गण विधेय अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दीवर जडंजागुडरोच सांग विदधतंग पट्टंबरस्य श्रिय वृंदारण्य निवासिनम हृदय सद्दाम दशम स्कंद प्रथम अध्याय। सबसे पहले सब ब्रह्मचारी लोग मठवासी
परसों
नगर संकीर्तन अभी तक बिजली का डेकोरेशन नहीं हुआ और इन लोग का काम आज समाप्त हो गया। उपगीयमानात् श्लोक की व्याख्या की और उसमें केवल यही कहा कोई भी व्यक्ति इससे जीव मात्र कृष्ण की लीला कथाओं से विरक्त नहीं होगा, जरूर उसका श्रवण करेगा किंतु बिना पशु घुना। बिना पशु घुना पुमान विरज्जेत बिना पशु घुना, वही जो मनुष्य जन्म लेकर के स्त्री भी नहीं, स्त्रियों में परतंत्रता देखी जाती है बहुत से विषयों में, जैसे रूप राधनाथ निकल गए और 6 दिन की 8 दिन 10 दिन 15 दिन एकदम चलते चलते जंगल के रास्ते से पूरी पहुँचे, महिलाओं के लिए ज़रा कठिन है, एक एक पेड़ के नीचे उन लोगों को रहना ज़रा संभव नहीं, कुछ परतंत्रता उनके घर में है। किंतु पुमान पुरुष को तो सब प्रकार से स्वतंत्र बनाया है, इसलिए कोई भी पुरुष जन्म लेकर के साधुओं का संग पा करके इससे कौन ऐसा व्यक्ति है जो पर इससे रहेगा, हरि कथा का अनादर करके सुनेगा नहीं, इसलिए मैं क्यों नहीं सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा, इसलिए आप हरि कथा करो। और दूसरा पुरुष से बतलाया मन माने जीव मात्र, स्त्री पुरुष सबके लिए यदि दृढ़ निष्ठा है तो महिलाएं भी इसके लिए कर सकती हैं जो पुरुष कर सकता है, इसलिए जीव मात्र के लिए। केवल यहाँ पर पुरुष स्त्री के लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग तक के लिए कहा। सभी लोग भगवान की कथाओं से कोई भी विरक्त नहीं होना चाहिए। उसमें कल उदाहरण दिया पशुओं के लिए, पशु घ्नाति के लिए, आत्मघाती और पशुघाती के लिए वो दिया, एक जो यहाँ नहीं है वहाँ है, जो वहाँ नहीं है यहाँ है, जो यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वहाँ भी है, जीवा या मरो। यस, तो किसी ऐसे बहुत से लोग हैं इसमें जिनके समझ में नहीं आया जी किस लिए ये कहा, किसके लिए ये कहा, बतलाओ तो निताई प्रभु किसके लिए ये? जो आत्मघाती हैं वे सबसे बड़े एक पशुघाती हैं, ब्याद बहेलिया ये लोग इसी में लगे रहते हैं, यहाँ तक अपने स्वार्थ के लिए ये लोग पशुओं की हत्या करते हैं, पशु खाते हैं, पशु दूसरों को बेचते हैं काट करके मांस मछली, ये लोग पशुघाती। और आत्मघाती कौन है? जो अपने परमार्थ की कोई वैल्यू नहीं देते, नहीं समझते, मनुष्य जीवन पाकर के साधुओं का संग पाकर के भी अवहेला पूर्वक उसको नष्ट कर देते हैं और भगवान का भजन नहीं करते, ये लोग हैं आत्मघाती। इसलिए आत्मघाती व्यक्ति के अतिरिक्त सभी मन से हरि कथाओं का श्रवण करें। अतः मैं इसे कैसे अछूता रह जाऊंगा? क्यों? अरे मैं तो ऐसे वंश में उत्पन्न हुआ हूं जिनके संबंध में ये कथाएं हैं, तुम्हारी मैया ना दादी, माँ मैया नहीं दादी सुभद्रा देवी, सुभद्रा देवी के से मैं इस वंश में आया हूँ, और ये सुभद्रा जी के भाई हैं कृष्ण, इसलिए डायरेक्ट उनके साथ में हमारा हम लोगों का संबंध है, इसलिए इनकी कथाओं से कैसे विरत होऊंगा। हाँ, कृष्ण हमारे कुल देवता हैं, कुल देवता और आराध्य हैं, फिर उनकी कथा क्यों नहीं हम सुनेंगे, जरूर हम सुनेंगे। इसलिए आप पुनः कृष्ण की विस्तार पूर्वक जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करें। इसलिए प्रथम अवस्था में जितने प्रकार के साधन हैं उन सब साधनों में श्रवण साधन ही सबसे श्रेष्ठ है। जितना ही अधिक श्रवण होगा उतना ही कीर्तन अधिक होगा, हरि नाम में उतने ही श्रद्धा होगा। एक बात मैं भूल जाऊंगा इसलिए फिर बतला रहा हूँ बीच में, आजकल आँख का रोग आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है, संक्रामक रोग, सबकी आंखें लाल हो रही हैं, करीब करीब आंख आ रही है सबकी। पितामहा में समरे अमरंजय देवव्रताद्या अतिरथई स्तिमिंगलय दुरत्या कौरव सैन्य सागरम कृतात्म तरण वत्स पदम स्म जत पल्लवा। ये कथाएं लीला कथाएं जो हैं परम वीर जीवती, डायरेक्ट उनसे हमारा संबंध है। पितामहा में, पितामहा में बहुवचन, इनके पितामह हैं अर्जुन। अब यहाँ पर पितामहा बहुवचन में पांचों पांडवों के लिए करें। ये समरे अमरंजय, समर में देवताओं को भी जय करने वाले देवव्रत भीष्म पितामह आदि द्रोण कर्ण जयद्रथ द्रोणी अश्वत्थामा कृपाचार्य इत्यादि ये अतिरथी हैं। एक होता है रथी, रथी अधिरथी महारथी, और फिर होता है अतिरथी अतिरथी, तीन जो 300 रथियों को रथ पर चढ़ करके युद्ध करने वालों को कंट्रोल करता है और उसे अकेले लड़ सकता है वो तो रथी है। जो हजारों रथियों के साथ में, रथ वालों के साथ में, धनुर्धारियों के साथ में सबको कंट्रोल करके सबको युद्ध में पराजित कर सकता है वो महारथी है। जो करोड़ों करोड़ों लोगों से कंट्रोल करके उनसे युद्ध कर में उनको भी विजय कर सकता है ये अतिरथी है। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोण अश माने द्रोणी अश्वत्थामा, जयद्रथ, इस कर्ण, ये इस कोटि में आते हैं, अतिरथी हैं। ये कैसे हैं? जैसे समुद्र में तिमिंगिलई सैन्य सागरम, सैन्य रूपी सागर है, जैसे सागर में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, किसी किसी मछली के लिए तो बतलाया गया है सैकड़ों मील लंबी चौड़ी होती हैं, फैल मछली को भी वो खा जाएंगी, ऐसी मछलियाँ जहाज को भी पलट देंगी, ऐसी ऐसी सब है, और सब छोटी बड़ी सब मछलियाँ कच्छप सबको वो खा जाते हैं, ऐसी ऐसी ने? तो वैसे ये कौन है? देवव्रत, जिनका व्रत कैसा है? देता हूँ जैसा व्रत है, इसी व्रत के बदले पिता की सेवा की और विवाह शादी नहीं की, इच्छा मृत्यु इनको हो गई, मर नहीं सकते आप, जब इच्छा करेंगे तभी मरेंगे, तो बतला उनको कौन हराएगा? अर्जुन चाहेंगे तो हरा लेंगे इनको? नहीं हो सकता, कोई भी इनको युद्ध में नहीं परास्त कर सकता है, इन्होंने प्रतिज्ञा की, ये एक दिन के अंदर में मैं 10,000 रथियों को मारूंगा, महारथियों को, बतलाओ ऐसे ऐसे भी 10 दिन लड़ते ना तो क्या हो जाता, ये सबको ये समाप्त कर देते। कृष्ण ने देखा तो ये अकेले ही सबको समाप्त कर देंगे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की अर्जुन को कल मारूंगा। दुर्योधन को नहीं मरने दूंगा, कैसे कैसे कर करके ये भीष्म पितामह मारे गए, ये मरने वाले नहीं थे। क्यों नहीं मरने वाले हैं? उन्होंने कहा जो पिता के लिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा, राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा। पिताजी जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसी की लड़की का जो लड़का उत्पन्न है वही राज्य का अधिकारी होगा, उसके पिता ने ऐसा ही कहा था। किसके? शांतनु के ससुर ने। ससुर माने एक धीवर था। अजय हम इस लड़की की शादी करेंगे उसी स्थिति में इसके गर्भ से पैदा होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझको जरूरत है, मैंने शादी नहीं करूँगा। घर में आकर के मुख लटका दिया राजा ने, शांतनु ने। पिताजी वो पिताजी को ऐसा देख करके भीष्म पितामह उसमें ब्रह्मचारी थे, क्या नाम? देवव्रत। उन्होंने कहा जी पिताजी आज इस प्रकार से सोच में क्यों हैं? तो इस उन्होंने बतलाया नहीं, तो उनका मंत्री था वो बतलाया जो इसलिए एक लड़की के साथ में शादी करना चाहते थे, और लड़की का पिता कहता है जो उसी के साथ में शादी दूंगा जिससे इसका लड़का ही राजगति। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की आज से मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, मैं खुद उसका उत्तराधिकार नहीं होऊंगा, और हमको कोई संतान ही नहीं होगा जिस पर आज पर बैठे, इसलिए उसी का लड़का हो। उसी समय में उसके पिताजी ने कहा जो यदि मैंने कुछ धर्म इत्यादि किया है तो तुमको इच्छा मृत्यु हो जाए, तुम इच्छा करेगा तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा, बस ऐसा हो गया, मर नहीं सकते थे। उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी हराया। परशुराम जी कैसे, जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार निक्षत्रित किया था। उन्होंने कहा जी उस लड़की से शादी कर लो, उन्होंने कहा जी मैं नहीं करूंगा। तो तुम जीत करके क्यों लाया? तो अपने लिए नहीं, उसके लिए क्यों किया तुमने? तुम अन्याय कर रहे हो। अन्याय कर रहा हूं ये बात तो ठीक है, किंतु मैं पिताजी की आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, और दूसरी स्थिति होती तो मैं कर लेता। तो आप, उन्होंने कहा जैसे यदि नहीं मानेगा तो हमसे युद्ध करो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बस उनको एक रास्ता खुल गया, अच्छा तो युद्ध कर लीजिए। बस युद्ध हुआ, उसमें कितने दिन, 40 दिन या कितना दिन तक युद्ध होता रहा, ये हारे नहीं। इसमें ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग आकर के मेट मिटाव कर कहा जैसे अरे आपका शिष्य आपका तो लड़का है, लड़के से हार जाने में सुलहनामा करने में कोई भी बात नहीं, अंत में इनको झुक करके सुलहनामा, ऐसे ये महाबली हैं। परशुराम जी से भी नहीं हारे, जो भगवान के अवतार हैं इनको कौन हराएगा। किंतु कृष्ण के चरणों का कृत्वातरण अतरण, कृष्ण के चरणों को नौका बना लिया, और उसकी कृपा से स्म जत पल्लवा वत्स पदम, इस महासमर को बछड़े का खुर में जैसा पानी होता है उसको वो पार कर। सोमत, इतनी कहानी में भी नींद आती है। दूसरी बात, द्रोणाचार्य को लो। द्रोणाचार्य उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर थे, कौरव पांडवों के लड़के खेल रहे थे, उनका गेंद एक गंभीर कुएं में गिर पड़ा। बच्चे सब कह रहे थे जी भाई कुआं में ये गिर गया, ये कैसे गेंद आए? अब निकालने की कोई भी सूरत नहीं थी। उसी रास्ते से द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण दुबला पतला जा रहा था, तो जब देखा जो भीष्म पितामह इत्यादि सभी उसमें हैं और चेष्टा कर रहे हैं और गेंद नहीं निकल रहा है, उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा जो मैं निकाल दूं, तब तो जाओ जाओ रास्ते में, इतने बड़े बड़े ही ये लोग हैं निकाल नहीं पाते, तुम निकाल देगा। तो उसने एक कोई सींक ली और उसका धनुष बना करके
धान द्रोण धान ला करके उसका ये करके उसका,
अरे हाँ वही हुआ है, एक ही बात
उसका रस्सी बनाकर
उसका ऐसा बाण मारा बस और निकल करके गिर चला आया। बाण में कुशलता, भीष्म पितामह ने कहा जैसे आज से आप हमारे कुल के गुरु बनेंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा आप देंगे, तो उनको शिक्षा दिया था। उनको ये वर था देवताओं का, ये वर था यदि कोई व्यक्ति आपके ब्रह्म तालु को छेद कर आपके इच्छा के अनुरूप यहाँ से फाड़ करके यदि आपकी आत्मा को निकालेगा तभी आप मरेंगे, नहीं तो मरेंगे नहीं। ये काम संभव नहीं था किसी के। इन्होंने यह काम यदि स्वयं वो करेंगे तो होगा, ध्यानस्थ हो करके अपनी आत्मा को अपने मन को यहाँ से निकाल करके ब्रह्मांड में चढ़ा करके, और उसको ये होगा जब इच्छा करेंगे होगा तभी होगा, और कोई कर नहीं सकता। मरे कैसे वो? उन्होंने कहा जैसे मैं ऐसे नहीं मरूंगा, अर्जुन को उन्होंने बतलाया। अर्जुन उनसे जा करके पूछा गुरुजी आप कैसे मरेंगे? कहा बेटा हम तुम्हारे लिए मर सकते हैं, तू हमारा बेटा है, प्रिय शिष्य है, इसलिए मैं बतला देता हूँ। महाभारत युद्ध आरंभ होने पर तुम सबसे पहले हमको द्रोणाचार्य को कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करना आरंभ। आप दूसरी बात यदि कोई कह दे जैसे युधिष्ठिर यदि कह देंगे ये तुम्हारा पुत्र मर गया अश्वत्थामा मर गया और उसको कोई यदि मार दिया मैं सुन लूँगा तब किसके लिए जीवित रहूँगा? तो मैं ध्यानस्थ होकर के अपने इसको अंदर यहाँ पर ले जाऊँगा, मैं खुद बन गया। इसको कृष्ण जानते हैं इसलिए युधिष्ठिर से इधर उधर फुसला करके उसे कहलवाया, और जब उन्होंने कह दिया तो उनकी बात पर विश्वास करके और फिर बैठ गए, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, रस से उतर गए और वहीं पर ध्यान होकर के अपने इसको यहाँ पर ले आए। इतने में दुष्ट तलवार लेकर के रस से कूद पड़ा और आज हम अपने अभी पिताजी के बैर का बदला लेंगे, और बस झट उनको मारा, बस सिर कट गया। अर्जुन जी बड़े उस पर क्रोधित हुए, फिर कृष्ण ने उनको समझा बुझा करके, तो ये मरने वाले नहीं थे, कृष्ण ने चलाकी चतुराई कैसे कैसे कर करके कर्ण परशुराम जी से सब सीखा धनुर्विद्या, और बहुत ही महत्वाकांक्षी था, किंतु क्षत्रियों को तो सिखाएंगे नहीं ब्राह्मण को सिखाएंगे, तो ब्राह्मण बन करके गया। कृष्ण ने उसके मारने के उद्देश्य से ही प्रेरणा करके एक वज्रकीट को ऐसे लगाया जो ऊपर से छेद करता हुआ नीचे चला गया या नीचे से छेद करके ऊपर चला गया, जंघे से रक्त निकला और उस पर परशुराम जी सिर दे करके सोए थे उसके जंघे के ऊपर में, वो रक्त लगा और रक्त लगने से उनको अच्छा ये कहाँ से ही आया, ऐसे देखा तो रहा पीछे देखा तो उसका जंघा छेदा हुआ, तो कौन है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, बतलाओ जल्दी अभी अभी संपात दो, तो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ब्राह्मण इतने सहिष्णु नहीं होते, तुम जरूर क्षत्रिय है, नहीं कहेगा तो अभी हम अभी संपात करेंगे। डर के मारे वो बोल दिया जी हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, बतलाया। अजय अच्छा हमसे छल किया, जाओ छल किया तो इसका फल ये होगा जब इसकी जरूरत होगी युद्ध में तुम इसको भूल जाओगी, जितनी हमारी ऐसे ही याद रहेगा, किंतु युद्ध के समय काम के समय में ये भूल जाएगा। और किसी तरह से एक गाय ने उसको अभी संपात दिया जो तुम्हारा रथ युद्ध के समय में फंस जाएगा, इसलिए रथ के युद्ध के समय में उसका चक्का उसमें चला गया और वो बाणों का संधान करना भी भूल गया, मंत्र भूल गया, और उस समय कृष्ण कहे मारो मारो, अर्जुन कहते हैं मैं नहीं मारता, कहे क्यों नहीं मारता, यह धर्म युद्ध नहीं है, कहते धर्म युद्ध इसने किया ने तुम्हारे लड़के को मारा और तुम्हारे साथ में ये युद्ध करा रहा है, तुम्हारा सब कुछ अपहरण कर लिया, द्रौपदी को नंगा किया और सब, जब धर्म की दुहाई कृष्ण ने साफ किया, तब इनको रोसवार बाण उठाया। ऐसा नहीं मरने वाला था ये किसी से नहीं, उस समय यदि चुक जाते तो नहीं होता। जयद्रथ, जयद्रथ के पिता थे, उन्होंने तपस्या की घोर, इसको पृथ्वी में कोई भी मार न सके, कोई भी नहीं मार सके। तो शंकर जी की आराधना किया, शंकर जी ने कहा कोई भी इसको नहीं मार सकता, किंतु एक बात है, इसको कोई ऐसा मारे, मारने के बाद इसका सिर तुम्हारे हाथों में आएगा और तुम देखेगा, और देख करके तुम यदि इसको फिर से इसके सिर पर लगा दोगे तो वो जीवित हो जाएगा, यदि फेंकेगा नहीं तो, और यदि तुमने इसको फेंक दिया अवज्ञा करके तो वो मर जाएगा, साथ साथ में दोनों मरेंगे। तो उसने तो ये बात हुई, अभिमन्यु मारा गया, प्रधान भूमिका इसी की थी, इसलिए कृष्ण और अर्जुन ने कोप किया था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को मैं मारूंगा, कल जरूर मारूंगा शाम तक। लड़ाई होने लगी, द्रोणाचार्य जी ने ऐसी किलेबंदी की ये शाम तक उसको देख न सके, एकदम भीतर में उसको कर दिया, और ऐसा कोई व्यूह की बनाया जिसमें कोई प्रवेश न कर सके, उसमें कोई प्रवेश नहीं किया। शाम अब होने आई, कृष्ण ने देखा जे अर्जुन तब मरेगा, उन्होंने अपने चक्र से सूर्यास्त होने के पहले ही सूर्य को ढक दिया। अर्जुन खिन्न होकर के युद्ध छोड़ करके रथ में और उतरे और आग में जल मरेंगे, चिता बनाने लग गए सब लोग। जब चिता तो सब लोग देखने के लिए आज आज मर रहा है अर्जुन, दुर्योधन ने कहा उसको, वो उनका भगनी पति लगता था, बहन हुई, चलिए अब देखें हम सब लोग वो मर रहा है खुशी के साथ में देखें, वो नहीं आ रहा, तभी सब लोगों ने मिलकर के उसको वहाँ पर लाया, यहाँ पर चिता में प्रवेश होने के लिए अर्जुन तैयार थे। चिता में आग लगा दी गई, आग धधकने लगी, अब कूदने वाले थे। कृष्ण ने कहा वीरों का ये कर्तव्य है कि धनुष बाण के साथ में आग में कूदें, इसलिए धनुष बाण लेकर के कूद मरो, ऐसे नहीं। तो अर्जुन ने धनुष बाण उनसे ले लिया और इतने कहा अर्जुन से, अभी दिन है, देखो अभी दिन है, जल्दी से मारो। उसके सामने एकदम आ गया ना, तो ऊपर में देखा तो सचमुच में चक्र वहां से हट गया, अभी दिन अभी छिपा नहीं था। बस ये सब लोगों ने कहा, अनारंभ किया जी, अधर्म युद्ध है, अधर्म युद्ध है, विशेष करके जयद्रथ। वहां पर द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब लोग थे, कोई भी रक्षा नहीं कर सके, बस उठाया और ऐसा मारा कि वो सिर लेकर के अब संध्या के समय में वो अन्न ही कर रहे थे, सूर्य को जल दे रहे थे, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, और उसी आंख बंद करके सूर्य का ध्यान करके, और उसी समय में वो सिर पहुंचा उनके हाथ, और सूर्याय नमः ऐसे किया और उसी समय पड़ा और पानी में गिर गया। अरे भाई भारी चीज क्या पड़ी, देखा तो अरे ये तो मेरे बेटे का सिर है। तब तक वहाँ साथ साथ में उसका भी सिर उड़ गया और उसका भी सिर उड़ गया। इसलिए वो भी बच गए और वो मारा गया। ये सब मरने वाले नहीं थे, अतिरथी भी मरने वाले नहीं थे, कृपाचार्य अमर हैं और अश्वत्थामा अमर है। वो इसके बाद में ब्रह्मा या क्या क्या होने वाला है, ब्रह्मा नहीं क्या, इंद्र या कुछ, तो वो मरने वाला नहीं है, तो वो लोग मरेंगे नहीं युद्ध में, इसलिए कहते हैं ये तिमिंगिल के समान है, किंतु दुरत्तयम, उनका मरना बड़ा भारी कठिन है। तभी उनके पितामह लोगों ने कौरव सैन्य सागर को अथा सागर को कृता तरण तर गए, कृत्वा तरण ने समुद्र को तर गए। कैसे तर गए? बस पदम स्म, ऐसे महायुद्ध को महासमर को बछड़े के अखूर का पानी बना करके अनायासी तर गए। स्म जत पल्लवा, कृष्ण के चरण कमलों को ही इन्होंने तरणी बनाया और अनायासी तर गए। इसलिए मैं भी अभी तरने वाला हूँ इन्हीं के नाम के बल पर। जन्म मृत्यु का ये अथाह संसार है, भव सागर है, और ऋषि ने हमको मरने का भी संपात दिया है। मरूंगा, सांप काटेगा मरे, किंतु क्या मैं उस कृष्ण के चरण कमलों को जिसको हमारे पितामह लोग आश्रय करके इतने बड़े सागर को तर गए, मैं नहीं तर सकता इसको, इसलिए मैं नहीं सोऊंगा, मैं इससे विरत नहीं हूंगा। आप उनकी कथाएं सुनाइए, मैं भी उसी को तरणी बना करके, नौका बना करके ये भव सागर को ही मैं, वो लोग तो तरे से महासमर युद्ध को, और हम क्या करेंगे? और इसके बाद में क्या होगा? वो तरणी हम छोड़ करके जाएंगे, जो लोग इसका आश्रय करेंगे भविष्यत में, विश्व के सभी जीव जंतु जितने भी लोग हैं सब लोग उसी को आश्रय करके भव सागर से। कौणश्च विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपचुक्षे कुक्षिंगत आप्तचक्रो मातुष्यमेज शरणं गताय। मुझे याद आ रही है, स्मरण हो रहा है, जब मैं माता के गर्भ में था, जब दुर्योधन मर रहा था और मरने के समय बड़ा दुखी था, एक गदा लेकर के कौओं और चीलों और सियाल इत्यादियों से अपनी रक्षा कर रहा था। शाम हो गई, गीदड़ आने लगे, सब मरे हुए शवों को खाने लगे, रक्तपान कर रहे हैं। उस समय मैं अपनी रक्षा कर रहा था, उसी समय में कृपाचार्य और ये अश्वस्थामा और कीत वर्मा सेनापति तीनों इसके पास में आए कुरुक्षेत्र में। उस समय आने पर इनकी दशा देख करके रोने लगे। इसने कहा, ये आपने हमको सेनापति नहीं बनाया, यदि बनाया होता तो आज मैं जो काम भीष्म पितामह जी, हमारे पिताजी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य नहीं कर सके, मैं वो कार्य कर देता, जरूर मैं इनको पांडवों का विनाश कर देता। आज आप भी अभी भी हमको बना दीजिए सेनापति, तो तू क्या करेगा? तो पांडवों समेत उसके वंश को सबको ध्वंस कर, वंश को मत ध्वंस करना, पांडवों का विनाश कर, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, बस अपने खून से लेकर और उसको तिलक कर दिया, जाओ अभी सेनापति बना दिया। ठीक, बस उनको लेकर के वो गया। जाने के बाद में तपस्या की, आराधना की शंकर की। शंकर जी तो रौद्र रूप है, महाभारत का युद्ध होना समाप्त होना है, पृथ्वी का भारण करना है, बस उसकी तपस्या से बोले, जे क्या चाहते हो? तो मैं ऐसा संहार कर सकूं सेनाओं का, अजय मस्त, बस उससे बलवान होकर के वो आया। हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे थे अपनी पूंछ से समस्त सारी सेनाओं को, और कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के दूसरी जगह कहीं चले गए थे विश्राम के लिए, वो लौटे नहीं, और सारी सेना रात में सो रही, हनुमान जी पारा दे रहे, बस ये किसी का वेश बना करके आया। और हनुमान जी कौन है? शंकर के ही, उनको भी प्रसन्न कर लिया। अब भीतर में प्रवेश करके सबसे पहले धृष्टुम्न का वध किया, जो उसको पिता को मारा था, बकरे की तरह उसको मारा, और सब बड़े बड़े वीरों को सोते समय में शंकर जी के आवेश में उसमें प्रवेश कर गए ध्वंसात्मक वो, और सबको बड़ी बुरी तरह से मार, और इनको पहरा नियुक्त किया जाए कोई भी व्यक्ति इसमें से बाहर ना निकलने दिया। ये दोनों लोग पहरा देने लगे, कृतवर्मा और कृपाचार्य, अब पशुओं की तरफ मैं सबको मारा। यहाँ तक कि इनके लड़के पांचों सो रहे थे द्रौपदी के, अर्जुन युधिष्ठिर अर्जुन भी इनके पुत्र से अभी 12-14 वर्ष के अभी थे, किंतु वीर बड़े थे, देखने में वैसे ही सब लोग सो रहे थे। उनको मार करके धृष्टद्युम्न को अपने पैरों से ऐसे गले में जैसे बकरे को बध करते हैं मार काट करके अब इनको भी काट दिया, इनका सिर उठा करके अपनी चादर में बांध करके और शिविर में आग लगा दी, जो था वो भी मरे। इसके बाद में बड़ा हृदय द्रावक वहाँ पर हुआ। इसके बाद में गया दुर्योधन के यहाँ, कहे देखो मैंने पांचों पांडवों का वध किया, बड़ा खुश हुआ, कहे अब मेरे सुख से प्राण निकल जाएंगे, लाओ दिखाओ तो भीम का जरा मस्तक तो दो। भीम के लड़के का मस्तक वैसा ही बड़ा था, उसको हाथ में लिया, कहा जैसे इसको ऐसे चकनाचूर जैसा चूर्ण कर दूँ, हाथ में लेकर के ज्यों किया तो ये कांकड़ खरबूजे की भांति वो बिना प्रयास का ही वो, अरे ये तूने क्या किया, भीम का ये कदापि नहीं हो सकता, जब भीम का नहीं है तो ये भी युधिष्ठिर अर्जुन के ये नहीं हुए, तुमने क्या किया, उनके लड़कों को मारा, हमारा वंश का ही सत्यानाश कर दिया, हमें कोई पानी, जाओ जाओ दूसरा होता तो मैं अभी संपात देता, अभी जाओ तुम्हारा मुख नहीं दर्शन कर, और हाय हाय करते हुए अपने प्राणों को छोड़। अब उसको डर लगा जिसे तो ये मरे नहीं है, जरूर हमको मारेंगे। सवेरा हुआ इधर कुछ स्त्रियां बची थी शिविर में, बस वो दाड़ मार करके रोही, कृष्ण अर्जुन सब जब आए तो देखा जा रही तो भयंकर दशा, अर्जुन जी को बड़ा भारी क्रोध, मैं जरूर उसको मारूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। इसके बाद में भीम और वो रथ पर चले उसको ढूंढने के लिए, और वो वहां से भागा, ये हमको तो खोद करके मारेंगे। जब थोड़ी देर के बाद में देखा जी हमारी पीछा कर रहे हैं, तब वो ब्रह्मास्त्र लिया। द्रोणाचार्य जी इसको ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा रहे थे, और ये जिद पर लगा था, अर्जुन को बड़े प्रेम से सिखाया था, किस लिए, अर्जुन सहिष्णु है, देश काल पात्र दे करके विचार करेंगे और रथ को उसको लौटा भी सकते हैं, इतनी सामर्थ्य इसमें सामर्थ्य नहीं है, मार तो देगा किंतु लौटा नहीं, इसको सिखाया नहीं ये विद्या, अधूरी रख दी। उसने कहा जी अच्छा, उसी समय में अर्जुन ने उसे पकड़ा, भीम ने अभिनय किया, भीम और ये दौड़ रहे थे, भीम रथ से कूद गए, जा रथ इतना जल्दी से तेजी नहीं चल रहा इसलिए दौड़ करके चले पैदल और उसको पकड़ा, अर्जुन भी वहां पर पकड़े, वो वहां जाकर आगे एकदम आग लगा दी इसलिए भाग नहीं सका, पकड़ लिया, पकड़ करके रथ में बांध करके पशुओं की तरफ में मारा नहीं ले आए, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी थी। अर्जुन ने कहा जब मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अब बाकी जो है वो पूरी करूँगा, आदेश दीजिए महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी, द्रौपदी के लिए ऐसा किया है, इस पशु को मैं हत्या कर दूँ, ये बच्चों को इस प्रकार से हत्या की है। बार बार करने पर ही द्रौपदी कुछ नहीं कर रही है, युधिष्ठिर महाराज भी कुछ नहीं कर रहे, भीम कहते हैं मारो मारो, कृष्ण ने कहा जी मारो, कृष्ण ने भी कहा मारो, द्रौपदी नहीं बोल रही, बार बार पूछने के बाद में तो कृष्ण ने कहा जी अच्छा द्रौपदी से तो पूछ लो, तो द्रौपदी से पूछा तो उसने कहा जी इसको छोड़ दो, कहते क्यों छोड़ दें, इसने तुम्हारे पांचों पुत्रों का वध किया, तो इसके वध करने से हमारे लड़के आ जाएंगे तब तो फिर उसका वध करो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हैं इसकी मैया भी इसके लिए रो रही, पिता तो मर गए हैं और मैया केवल है, इसलिए गुरुपुत्र जैसा भी है पशु है जैसा भी, कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण की तरफ में देखा, जैसे मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा इसका वध करूंगा, भीम करें जो मारो इसको, और ये करें ये मत मारो, क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसे देखो ब्राह्मणों का वध तो नहीं किया जाए, तो ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है, तो इसको भी वध मत करो, इसका अपमान करके छोड़ दो, इसके सिर में मणि है उसको निकाल दो और मोत दाढ़ी वैसे रख करके और इसको छोड़ा। इसके बाद में उसको काट करके उसका सिर और मणि निकाल लिया और उसका सिर मुंडन करके जब छोड़ दिया, बहुत अपमानित हुआ, जो इसे तो मरना ही अच्छा था। अच्छा तो ठीक है, मेरा अपमान किया तो मैं इसका बदला लूं, बस थोड़ी देर जाकर के वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जैसे तुम्हारे अब वंश को ही मैं ध्वंस करता हूँ। उस समय मैं अभिमन्यु क्या पुत्र ये परीक्षित महाराज जी गर्भ में थे, अभी गर्भ भी पुष्ट नहीं हुआ, और उस समय में संधान किया और उस समय में जब छोड़ा तब वो पुत्रा एकदम दौड़ी, छटपट आ गई, आग लग गई, कृष्ण रक्षा कीजिए, कृष्ण रक्षा कीजिए, और कुंती महारानी पीछे से दौड़िए, कृष्ण इसकी रक्षा करें, और वो थी द्रौपदी, बस कृष्ण साथ ही साथ में आए। उसी को कह रहे हैं द्रोणास्त्र विप्लुष्ट एकदम, जब उसने संधान किया ब्रह्मास्त्र का, बदंगम संधान बीजम, मेरा जो अंग है मैं हूं वो कौन हूं, संतान बीजम, पांडवों का संतान भी, कौरवों का भी, दोनों का, कुरु पांडवाना, कौरव और पांडव में बस यही केवल एक बच रहे थे, ये यदि मर जाते तो सब समाप्त हो जाता। जो बीच स्वरूप में था जुगोप कुक्षिंग गत आत्मचत्रो, हमारी मैया के कुक्षि में प्रवेश करके गर्भ में, और जुगोप विशेष रूप से रक्षा की, कैसे, आत चक्रो, आत माने हाथ, हाथ में चक्र लिया और क्या किया, हमारी तो रक्षा की, साथ साथ में मातुश्च जुगोप, माता की भी रक्षा की, यदि मैं मर जाता उस समय में तो मैया भी उसे मर जाती, या संतान यदि मरा हुआ होता और मैया देखते तो भी मर जाती, इसलिए उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैया और हमारा दोनों का मरना निश्चित था, इन्होंने रक्षा की। जो जिन्होंने ऐसा किया वो कौन है, वो कृष्ण है, शरणम गदाया, मैं उनके अब शरण होगा, यह कहकर के कहा जी प्रभो अब विलंब मत कीजिए, अब उन्हीं की जो कथाएं आप हमको अब शरण, वो कथाएं ही हमारी रक्षा करेंगी, जैसे चक्र ने किया रक्षा, ये कथाएं क्या करेगी, यही हमारी रक्षा की, ऐसा कह करके फिर हरि कथा के लिए बस आज यही कर वंछा कल्पतरु नगर संकीर्तन। आप लोग सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ में, बंधुओं के साथ में, सखियों सहेलियों के साथ में नगर संकीर्तन में शामिल हो और सबको ये सूचना, फिर ज्ञान तस्याखिल देह भाजा अंतर बही पुरुष काल रूपई प्रयच्छ तो मृत्यु मृत्युम उत अमृतंच माया मनुष्य बदस्व विद्वन। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की अभिनंदना करते हुए हरि कथा और अग्रसर होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। विशेष करके उन्होंने कहा जो मैं कौरव और पांडवों का बीज था, संतानों का बीज, विशेष करके आप हमारे कृष्ण हमारे कुलादि देवता हैं, कुलादि देवता भी नहीं और हमारी रक्षा करने वाले हैं, पेट में और साथ साथ में मैया की भी हमारी रक्षा करने वाले हैं। उन कृष्ण के संबंध में कुछ हरि कथा आप वर्णन कीजिए। जिस उन्होंने कहा कल जो हमने बतलाया, हम लोगों के पितामह लोग, मेरे पितामह लोग युधिष्ठिर, दत्त, भीम, अर्जुन इत्यादि समर में देवताओं को भी जय करने वाले, अजर अमर होने वाले देवव्रत भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा इत्यादि जो, उन सबको भी परास्त करके और समर में जयी बनाया इनको, हमारे पितामहों को। केवल यही नहीं, द्रोणी के अस्त्र से हमारा वंशी ध्वंस हो चुका था, आपने ही हमारी रक्षा की, इसलिए उनकी कथा का कुछ वर्णन आप कीजिए। बिरजानी तस्य अखिल देह भाजो अंतर बही पुरुष काल रूपी प्रयच्छो मृत्यु उत अमृतंच माया मनुष्य पदस्व विद्वन। हे विद्वन, विद्वन माने आप कृष्ण के लीलाओं के जानने वाले शिरोमणियों में से एक हैं, तत्व विद, रसिक और भागवत के अर्थ को जानने वाले, लीला कथाओं के अर्थ के आप जानने वाले हैं, इसलिए आप वर्णन करें। क्या वर्णन करें? बिरजानी माया मनुष्यस्य, माया से जो मनुष्य बने हैं या माइक लोग उनको मनुष्य समझते हैं, उनका अर्थ हम पीछे बतलाएंगे। अखिल देहियों के अंतर और बाहर में पुरुष और काल के रूप में विराजमान हैं, उनके वीर्य की महिमा की का आप जानने वाले हैं, इसलिए आप इसका वर्णन करें। जो पुरुष रूप में अमृत और काल के रूप में अमृत प्रदान, पुरुष के रूप में अमृत प्रदान करने वाले हैं, अब इसकी व्याख्या सनातन गोस्वामी जी, गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने की है, हम लोग इस पर विचार करें। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर सिद्धांत इसमें निहित है। क्यों कह रहे हैं इसका तात्पर्य इसमें ये बतलाएंगे। पहली बात, उन्होंने पहले बतलाया है एक श्लोक में, निवृत्त तरसै उपगीयमानात् भवसोधात् सोत्री मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् विरज्येत बिना पशु बिना। पशु घातियों के लिए, आत्मघातियों के अतिरिक्त मुक्त महापुरुष लोग, भक्त, एकांतिक भक्त लोग, रसिक लोग, जीवन मुक्त लोग, मुमुक्षु लोग, भक्ति की इच्छा करने वाले लोग, विषयी लोग, यहाँ तक कि ज्ञानी और योगी लोग भी हरि कथा के को सुनते हैं। ज्ञानियों को सहज ही भक्ति के द्वारा मुक्ति मिल जाती है, इसलिए भगवान की कथाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जो कोटि कोटि जन्मों में उनका होता मुक्ति होती, वो हरि कथा के श्रवण से बहुत ही सिद्ध हो जाता है। योगी लोगों का ये जो सिद्धि होती है वो हरि कथा के माध्यम से बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए क्यों नहीं सुनेंगे। विषयी लोग जो विषयों के संग्रह से जो सुख नहीं पाते हैं हरि कथा के द्वारा, उनका वह विषयों का सुख भी अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सभी लोगों को इसको सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत में हरिनाम के लिए भी ऐसा कहा गया है, हरिनाम के लिए ये बतलाया गया है, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छतां अकुतो भयम् योगी नाम निर्णितम् हरे नामानुसूतम्। जैसे नाम बतलाया गया, एतत् निर्विद्यमानानां, जो संसार से निर्वेद प्राप्त एकांतिक भक्त लोग हैं, निर्विद्यमानानां इच्छतां, इच्छा करने वाले, क्या विषयों की इच्छा करने वाले अथवा प्रेमा भक्ति की इच्छा करने वाले भी हो सकता है, कोई चीज की इच्छा करने वाले हैं, निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम्, जो सर्वत्र अकुत भय रहना चाहते हैं, कहीं भी जिनको भय नहीं, जन्म मृत्यु से पार कर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, योगियों के लिए, सब लोगों के लिए, संसार में सुख और शांति यदि कोई चाहता है तो भी उनके लिए भी हरिनाम और हरिकथा जरूरी है। इसके द्वारा जैसे सुख और शांति मिलेगी और किसी भी उपाय से नहीं मिलेगी, इसलिए सबके लिए ये, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए पुंसां, ये कल हमने बतलाया। तो वही कह रहे हैं हरि कथा सबके लिए उचित है, किंतु सुखदेव स्वामी जी कृपा करके नौवें स्कंद की कथा बोला है वहाँ तक तो ठीक है, सबके लिए है, किंतु आगे की कथा जो आरंभ करेंगे, जो इनको सुनना अभीष्ट है, बाकी है, ये जो अब दशम स्कंद के लिए सुनने के लिए जो प्रश्न करते हैं लीला की, कृष्ण की लीला कथाओं, ये सबके लिए श्रवण योग्य नहीं, बहुत ही सुदुर्लभ है, इसमें सबका अधिकार नहीं। इसलिए यहाँ पर सोच रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी इसलिए चुप हो गए हों, ये अनाधिकारी ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी सब भरे पड़े हैं,